ओम शांति। आप सभी इस समाधान स्वरूप बट्टी के अंदर बहुत अच्छी तपस्या कर रहे हैं, बहुत प्यार से और एकाग्र होकर बाबा की याद में बैठते हैं और बच्ची के अंदर बहुत सूक्ष्मता की तरफ धीरे धीरे पहुंच जाते हैं, क्योंकि इस समय आपका पूरा ध्यान अपनी ओर है कि मुझे अपना ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो जितना हम सूक्ष्मता में जाते हैं तो सहज हम हर बात को महसूस कर सकते हैं। तो आज का अभी यही विषय है, श्रेष्ठ वृत्ति से वायुमंडल परिवर्तन। बहुत भाई बहने ये चाहते हैं, पूछते भी हैं कि हम कैसे प्यारे बाप दादा की इस बात को पूरा करें, प्रैक्टिकल लाएं, क्योंकि वर्तमान समय बहुत बहुत आवश्यक है वायुमंडल को ठीक करना, वायुमंडल को अच्छा बनाना, श्रेष्ठ बनाना। चाहते हैं ना आप सब? बोलिए। हाँ जी, क्योंकि सारी दुनिया क्या बन गई है, बिल्कुल तमो प्रधान। आप सब अच्छी तरह जानते हैं ये बात, कैसी हालत हो गई है इस संसार की। एक बार बाप दादा का संदेश आया था, बहुत वर्ष पहले की बात है, मैं समझती हूँ 20-25 वर्ष हो गए होंगे। हमारी ही बच्ची थी तो बाप दादा ने कहा था, आने वाला समय ऐसा होगा कि चारों तरफ का वायुमंडल बहुत खराब होगा और उसमें 13 प्रकार के, बाबा ने कहा था, भूत होंगे, समस्याएं होंगी। और आज आप देख रहे हैं कि कितनी तेजी से सारे संसार का वायुमंडल क्या बन गया है, क्या क्या हो रहा है, कितनी एकदम तमो प्रधानता उच्च उस तक पहुंच चुकी है, कितनी समस्याएं हैं, चारों तरफ विकारी वातावरण बन गया है, ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, मनुष्य का हृदय वो हो जाता और कहते हैं ये तो हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। कैसी कैसी बीमारियां, नई नई बीमारियां जिनका कभी नाम तक नहीं होता था। प्रकृति देखो कैसी हो गई है, ईवल सोल्स का कितना प्रभाव चारों तरफ है, क्या क्या है। अब ऐसे तमो प्रधानता को, ऐसे इतने दूषित वातावरण को, विशियस जिसको कहेंगे, कौन परिवर्तन कर सकता है। दुनिया की कोई ताकत नहीं, संसार में कोई ताकत नहीं, कोई ऐसी सत्ता नहीं जो बदल सके, नहीं तो इतनी गिरावट होती ही नहीं, हालात बिगड़ते ही नहीं। कोशिश सुधारने की करते हैं, रिजल्ट नेगेटिव जाती है। तो ऐसे को इस प्रकार ऐसा वायुमंडल अच्छा बनाना, उसको परिवर्तन करना, ये ईश्वरीय ताकत ही है। और प्यारे बाबा के हम बच्चे जिनका संबंध सर्वशक्तिवान समर्थ परम सत्ता के साथ है, बाबा कहते आप ही बच्चे इस वायुमंडल को बदल सकते हैं, क्योंकि इसके लिए किसी साधन की जरूरत नहीं, किसी ताकत की जरूरत नहीं, किसी कला या विद्या की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। जो भी आज दुनिया के जितने भी कोई माध्यम है, कैसे भी, चाहे सुलटे चाहे उल्टे, उल्टे भी हैं, उसमें किसी में भी जाने की जरूरत नहीं। सिर्फ और सिर्फ प्यारे बाबा ने हम बच्चों को बहुत सहज विधि दी है, बच्चे आप अपने आप को अंदर से सूक्ष्म मानव आत्मा की जो वृत्ति है, हमारी जो वृत्ति है, सिर्फ उसे शुद्ध रखो। बस वृत्ति से स्वतः ही वायुमंडल बनता है। जैसी वृत्ति होती है, कहते ना, वैसी ही दृष्टि, फिर वैसी ही कृति, और फिर वैसी ही आकृति। तो हमारा देखना, करना, स्वरूप हमारी अंदर की वृत्ति से स्वतः बनता है, स्वतः बनता है। हमें इसलिए अपनी वृत्ति को, अपने अंदर को, अंदर से अंदर सूक्ष्म में बस इतना उसको प्योर और पावरफुल बनाना है। जितनी जितनी हमारी वृत्ति शुद्ध होगी, शक्तिशाली होगी, स्वतः अपने आप उसके वाइब्रेशन चारों ओर फैलेंगे, चारों ओर फैलेंगे। और ऐसा कार्य, ऐसी सेवा प्यारे बाबा के हम बच्चे ही कर सकते हैं, दुनिया में कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वृत्ति की इतनी शुद्धता कहां से आए। और हम सब राजयोगी सदा अपने मन वचन कर्म को श्रीमत पर चलाने वाले, चलने वाले एकदम शुद्ध प्रवृत्ति के संस्कारों वाली आत्मा बन रही है। तो वृत्ति एक प्रकार का बीज है, जैसे बीज की जैसी क्वालिटी होती है वैसा ही फल आता है। हमारी वृत्ति जितनी शुद्ध होती जाएगी, रिजल्ट स्वतः आएगा। हमें उसका चिंतन नहीं करना। कई बार उल्टा हो जाता है, ब्राह्मण भी बार बार वायुमंडल का ही चिंतन करते रहते हैं, देखो ना ऐसा हो गया है, देखो ना हाँ दुनिया में ऐसा हो गया, देखो ना ये ब्राह्मण भी ऐसा है, हाँ ये सेंटर पे भी ऐसे होता है, हमारे घर में भी ऐसे होता है, वायुमंडल ही खराब हो गया, उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया। ये हम और ही वायुमंडल को खराब करने के, कमजोर करने के निमित्त बन जाते हैं, और ही अपनी वृत्ति में भी कीचड़ा इकट्ठा कर लेते हैं। परंतु हमारी वृत्ति में ये सब बातें प्रवेश ही ना करें। इसलिए हमें अपनी वृत्ति को शुद्ध बनाने के लिए ध्यान देना होगा कि मेरी दृष्टि में ऐसी बातें आए नहीं, मेरे संकल्पों में ऐसी बातें आए ही नहीं, मुझे उनको एंट्री देनी ही नहीं तो मेरी अपनी वृत्ति दूषित हो जाएगी। और जो वृत्ति में अंदर होता है ना, क्योंकि बहुत सूक्ष्म है, अपने आप उसका वाइब्रेशन जाता, आप उसको रोक भी नहीं सकते। कई बार देखो आप लौकिक संसार में भी चोर नहीं बताता मैं चोर हूं, वो इतना अच्छा मुखड़ा रखता है और इतनी अच्छी प्लानिंग करता है, लेकिन उसकी वृत्ति का वाइब्रेशन बताता है कि ये आत्मा ठीक नहीं है। आपने भी अनुभव किया होगा कई बार, या कोई भी प्रकार के, सिर्फ चोर की बात नहीं, किसी भी प्रकार का कोई भी आत्मा कैसी भी है, उसका वाइब्रेशन होता है, स्वतः होता है, स्वतः। तभी बाबा हम बच्चों को कहते, बच्चे आप अपनी अंदर सूक्ष्मता में जाओ, बस उस पर ध्यान दो, मेरी वृत्ति में दूसरी बातें ना आए। इसलिए देखो अभी कितना सुंदर गीत बजा था, शुभ संकल्पों के दीप जगाओ। क्यों? क्योंकि हमारा जितना शुभ चिंतन होगा, शुभ देखना होगा, शुभ सोचना होगा, तो हमारे अंदर की भावनाएं बहुत शुद्ध रहेंगी, हमारी वृत्ति शुद्ध रहेगी। हमें इसलिए एंट्री ही नहीं देनी अंदर। और बाबा किसके लिए हमको श्रीमत है, बच्चे सी नो ईविल, टॉक नो ईविल, डू नो ईविल, इवन थिंक नो ईविल। क्योंकि हम देख भी लेते हैं भले आपने किया नहीं, हम सोच भी लेते हैं, हाँ, ध्यान नहीं देते कि मैं क्या देख रहा हूं। कई बार सोचते हैं नहीं हमने देखा ही तो है, मेरे पर इसका कौन सा असर होना है, परंतु वो कहीं ना कहीं हमारे जहन में, अंदर वृत्ति में उसका प्रभाव पड़ता ही है। ना पड़े ये हो नहीं सकता, क्योंकि आंखों से देखने वाली कौन है, आत्मा है ना। और देखा तो आत्मा का संकल्प हुआ ना वैसा, ना हो देखा आत्मा ने, तो आत्मा तो अविनाशी सत्ता है, वो ऐसे ही चला गया ऐसा नहीं हो सकता। एक भी संकल्प हमारा जो चलता है, चाहे सुनकर, चाहे देखकर, चाहे बोलकर, चाहे कुछ भी नहीं किया आपने, सिर्फ एक दृश्य को आपने निहारा, वो भी हमारी वृत्ति में चला जाता है। इसलिए उससे हमारी वृत्ति वैसी बनती है। कई बार देखो कई आत्माएं ऐसी संपर्क में आती हैं, आप उन्हें कई बार कितना समझाते हैं, सोचते हैं आपके मन में है ये ठीक हो जाए, तो आपको पता चलता है कि इसको कितना भी समझाओ इसकी तो वृत्ति ही ऐसी है, प्रवृत्ति ही ऐसी है, ये बदल नहीं सकता। तो क्या सिद्ध होता है इस बात से, हमको ये थॉट रखना नहीं है, बाबा ने ये नहीं कहा है, लेकिन मेरा कहने का भाव अर्थ है कि ये समझ में तो आता है ना कि वृत्ति का कितना प्रभाव पड़ता है। हमको तो और ही ऐसी आत्मा के प्रति भी शुभ वृत्ति, शुभ भाव रखना है कि इसका भी कल्याण हो। और ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में ये करके दिखाया। ब्रह्मा बाबा के अंदर ये नेचुरल था कि हर आत्मा के प्रति, हर आत्मा चाहे पास की थी चाहे दूर की थी, चाहे फेवर में थी चाहे नहीं थी, चाहे बाबा को कितना भी यज्ञ स्थापना के समय कैसी कैसी आत्माओं का सामना करना पड़ा, परंतु बाबा की वृत्ति है हमेशा उन सब के लिए कल्याण की भावना रही, क्षमा की भावना रही। बाबा को पता होता था ये बिल्कुल ठीक नहीं किया इसने जो किया है, परंतु बाबा कभी शो नहीं होने देते थे, चेहरे से भी मिलने वाले को आभास नहीं होता था, क्योंकि बाबा की वृत्ति में उनके प्रति हमेशा शुभ भावना थी, कल्याण की भावना थी। आज हमारी दादियों में, हमारे निमित बड़े भाइयों में कितनी कारोबार है, कितनी कारोबार है, किस किस प्रकार की बातें सामने आती हैं, आप सोच सकते हैं, सोच भी नहीं सकते। आप अपनी बात सोच सकते हैं, अपने सेंटर की समस्या सोच सकते हैं, पूरा विश्व है, विश्व का कार्य चल रहा है, विश्व के परिवर्तन का कार्य चल रहा है, इतना बेहद का, और सभी प्रकार की आत्माएं, कोई एक लेवल की आत्माएं यहां नहीं आती, हर वर्ग की, हर स्तर की, हर आयु भाषा लिंग वाली, तो कैसे चलाते हैं? अंदर वृत्ति में बहुत शुद्धता है, कल्याण की भावना है, रहम की भावना है कि इसका भला हो। चाहे कभी कोई ऑफिशियल रूप भी रखना पड़ता है तो भी अंदर अंदर में अंदर सूक्ष्म ये भरा हुआ है कि इसका भला हो, कल्याण हो, रहम है, क्षमा भाव है। और इसीलिए बाबा का ये कार्य तेजी से आगे चल रहा है, कार्य रुकने वाला नहीं है। पर हम सबको, एक एक ब्राह्मण को, एक एक को, चाहे छोटा है या बड़ा, आयु से या ज्ञान के आयु से, हाँ, या कारोबार से, किसी भी बात में, लेकिन वह इस बात के लिए निमित्त है, जिम्मेवार है कि उसे वायुमंडल बहुत श्रेष्ठ बनाना है। चाहे वो कहां पर भी खड़ा है, चाहे घर में है, सेंटर पे है, ऑफिस में है, देश में है, विदेश में है, किसी भी कारोबार में है, परंतु हर ब्राह्मण बच्चे की ये जिम्मेवारी है, वह निमित्त है कि उसे विश्व परिवर्तन में आज की इस दुनिया के वायुमंडल को परिवर्तन करना ही है। जो कि बाबा ने हम बच्चों में बहुत नेचुरल डाला है, उसके लिए कोई बहुत मेहनत की बात नहीं है। वैसे भी आप देखो, अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी अच्छी बातें सुनना अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता है ना? आप सबको भट्टी में क्यों मजा आ रहा है? अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हो, हाँ, इसीलिए मजा आ रहा है ना, अच्छे अच्छे को देख रहे हो, सब हमारे बड़े ब्राह्मण निमित्त, हाँ, उन सबको देख रहे हो, सुन रहे हो, कल दादी जी द्वारा भी सुना है ना, ब्रह्मा भोजन खा रहे हो, बढ़िया बढ़िया भोग खा रहे हो, कितना अच्छा योग लगा रहे हो, रोज वरदान मिलते हैं, वायुमंडल कितना अच्छा है, और दैवी परिवार चारों ओर दिख रहा है आपको, इसलिए कितना अच्छा लग रहा है। तो अंतरात्मा अंदर से कितनी सुख महसूस करती है ना? तो हमारा स्वभाव क्या है देखा जाए तो, क्या है? अच्छा अच्छा सुनना, अच्छा अच्छा देखना, अच्छा अच्छा अपने पास रखना, अच्छा अच्छा समाना, है ना? हाँ, कोई आपको खराब खराब चीजें दे, आप लेके रख लेंगे, कहेंगे क्या बेकार की लाया है, और ही अपने को क्या महसूस करेंगे कि इसने मुझे इसी योग्य समझा है, अच्छा नहीं लगेगा आपको। इसी प्रकार हम अपने जीवन काल में हम बाबा के बन गए, हमारा जीवन बहुत ऊंचा, बहुत श्रेष्ठ है, साधारण नहीं। हमें सब कुछ अच्छा अच्छा ही सोचना है, अच्छा अच्छा ही देखना है, अच्छा अच्छा ही अपने पास बात रखनी है, और दूसरी हमको रखनी ही नहीं, देखनी भी नहीं, हमें पसंद ही नहीं। छोटे बच्चे को भी अगर कोई चीज ठीक नहीं लगती ना, पसंद नहीं आती, वो कहता है मुझे नहीं चाहिए, फेंक देता है। माँ समझती है शायद कभी काम आ जाए, रख ले, कहेगा नहीं ये बड़ी गंदी पेंसिल है, बड़ी गंदी रबड़ है, मैं टच नहीं करूंगा इसको। तो हमको भी अपनी ये नेचर बनानी है, जो बात अच्छी नहीं हमें नहीं देख सुननी, हमें नहीं देखनी। तो जितना हमारी हर चीज से, हर बात से, हर व्यक्ति से गुण देखने का स्वभाव बनता जाएगा, आपकी वृत्ति अपने आप शुद्ध होती जाएगी। गुण मूरत बनो, और गुण मूरत बनने से तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी डिवाइन हो जाएगी। हाँ? आप दिव्य आत्मा बन रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपकी डिवाइन पर्सनैलिटी बने, चाहते हैं ना? हाँ? सब चाहते हैं, सब ब्राह्मण चाहते हैं, नया भी होगा ना वो भी चाहता है, बहन जी जल्दी ही बन जाए, हमको तो टाइम भी नहीं मिला, आप सबको तो टाइम मिला। हर एक चाहता है, और जब हम गुण देखते हैं तो अवश्य ही हमारी वृत्ति गुण देखते देखते, अच्छा सोचते सोचते, शुभ संकल्पों को रमण करने से वृत्ति की शुद्धता होती जाती है, क्योंकि उसका प्रभाव पड़ता है हमारी अंतर आत्मा पर, हमारी फीलिंग्स पर, हमारी सूक्ष्मता पर, ऑटोमेटिकली पड़ता है, ऑटोमेटिकली, और फिर उसी का ही वाइब्रेशन जाता है, वो भी स्वतः ही जाता है। आप कितना भी छिपाओ, कितना भी छिपाओ, नहीं छिप सकता। मान लीजिए आप कोई दो बहनें या दो भाई आपस में किसी का पर चिंतन कर रहे हो, मिसाल के तौर पे, और कोई व्यक्ति पास में आता है, अब आप नहीं कर रहे क्योंकि एक थर्ड प्राणी आपके पास आ गया, परंतु आपके उस पहले किए हुए का, क्योंकि आपने मुख से बोला है, आपके अंदर है, अंदर है, उस समय चाहे आपने स्टॉप कर दिया, परंतु उसका वाइब्रेशन जाता है, सिर्फ उस प्राणी तक नहीं, पूरे वायुमंडल में जाता है, आप उसे रोक ही नहीं सकते, क्योंकि ये सूक्ष्म शक्ति है, वृत्ति इतनी सूक्ष्म है, क्योंकि आपकी वृत्ति में है वो, तभी तो आप कर रहे हैं ना, चाहे सुन रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए सुन ही रहे हैं, कहते मैंने कुछ कहा थोड़ा, मैंने सुना ही तो, परंतु वो आपके अंदर गया गया। उसका प्रभाव रहता है। एक बार एक राजा और मंत्री, उनके आपस में बहुत अच्छे संबंध थे, तो राजा अपने दिल की कोई कोई बात मंत्री को सुनाता था। राजा बहुत अच्छा था, कारोबार बहुत अच्छी चलाता था, होशियार था, तो फिर भी हाँ राजा था तो थोड़ा वो तो होता है ना, डिप्लोमेसी होती है, अंदर मैं ऐसे कर लूँ, हाँ प्रजा को मैं ऐसे चलाऊं। तो वो मंत्री उसको कहता था, राजन अगर आप दिल में कुछ भी ऐसा रखेंगे ना, ये होशियारी कर लूँ, वो कर लूँ, हाँ, तो प्रजा को कुछ छिपता नहीं है। राजा इस बात को मानता नहीं था, कहता प्रजा को कैसे पता चलेगा मेरे दिल में क्या है, हाँ, मेरी भावना क्या है, और कोई क्या जाने उससे, उसका क्या मतलब। वो तो जो मैं आदेश देता हूँ, जो मैं सिस्टम चलाता हूँ, वही तो सब जानते हैं। मंत्री बहुत राजा को समझाता था, राजन ऐसा नहीं है। तो आखिर मंत्री ने सोचा, चलो कोई मौका देखकर फिर मैं राजा को, कभी कोई ऐसा मौका लगेगा तो ये एहसास कराऊंगा जरूर। तो एक बार वो दोनों ही शिकार खेलने जा रहे थे, राजा भी और मंत्री भी, दोनों साथ साथ जाते थे। दोनों ने शिकार की ड्रेस पहन ली और दोनों ही अपने अपने घोड़े पर सवार हो गए। अभी वो राजमहल से बाहर निकले थे और अपने राज्य से बाहर की ओर गांव की तरफ पहुंचे थे, क्योंकि जंगल में जाना था शिकार खेलने। तो दोनों आपस में बातें भी करते जा रहे थे, तो क्या देखा, सामने से एक दूध वाला जो एक पगडंडी बीच में आती थी उसको पार कर रहा था, और साइकिल थी, दूध के ड्रम लटके हुए थे। तो मंत्री को पूछता है राजा कि ये कौन जा रहा है। तो मंत्री बोलता है कि महाराज ये दूध वाला है, ये दूध बेचता है, ये अपने गांव से दूसरे गांव में दूध बेचने जा रहा है, दूसरे शहर में दूध बेचने जा रहा है। तो राजा तुरंत बोलता है ये जरूर दूध में पानी मिलाता होगा, इस पर ना टैक्स लगाओ। तो मंत्री चुप रहा, राजा बोलता रहा। तो तब तक उनका घोड़ा दूध वाले के पास तक पहुंच गया। तो मंत्री ने दूध वाले को रोका, कहे दूध वाले, वो रुक गया। तो मंत्री ने क्या किया, क्योंकि दूध वाले को तो ये पता नहीं चला ये राजा है ये मंत्री है, वो तो शिकार की ड्रेस में थे। तो मंत्री ने दूध वाले को कहा, तुम्हें मालूम है कि इस राज्य का जो राजा है वो युद्ध करने गया हुआ है, और वो वहाँ बुरी तरह घायल हो गया है। तो दूध वाला कहता, मेरे को क्या, हो गया तो होने दो, मरता है तो मरने दो। और राजा सुन रहा था, साथ ही तो था, राजा को जरा भी अच्छा नहीं लगा, और दूध वाला कहता हुआ चला गया। तब मंत्री राजा के मुंह की तरफ देखने लगा। तो जब मंत्री राजा के मुंह की तरफ देखने लगा तो राजा समझ रहा था कि मैंने भी, जब मंत्री ने मुझे कहा ये दूध वाला है, तो मेरे मन में इसके लिए क्या आया था कि ये जरूर दूध में पानी मिलाता होगा, हाँ ये लूटता होगा गांव वालों को, इसके ऊपर कर लगाओ। तो जबकि दूध वाले ने सुना ये कुछ भी नहीं था। तो देखो राजा को रिस्पॉन्स कैसा मिला, सोचिए। तब मंत्री अंदर से समझने लगा कि राजा को कुछ तो समझ में आ रहा है कि मेरे मन में उसके लिए, मेरी वृत्ति में उसके लिए कैसी विचारधारा, हाँ कैसी फीलिंग थी। फिर थोड़ा और आगे बढ़ते गए, मंत्री ने समझाने की कोशिश नहीं की राजा को। आगे बढ़े तो एक बुढ़िया, क्योंकि जंगल आ गया था, वहां से लकड़ी काटकर, छोटी छोटी पतली पतली लकड़ी काटकर उसका गट्ठड़ बनाकर सिर पे रख के आ रही थी। तो राजा ने दूर से ही देखा एक बुढ़िया आ रही है और उसके सिर पर लकड़ी का गठड़ा है। तो राजा मंत्री को कहता है, मंत्री ये बुढ़िया आ रही है और इसके सिर पर लकड़ी का गठड़ा है, इतनी वृद्ध है, या मेरे राज्य में ऐसे लोग भी हैं जो इतनी मेहनत करते हैं और इतना कष्ट का जीवन जी रहे हैं। तो मंत्री ने कहा हाँ राजा, बहुत लोग ऐसे हैं। तो राजा ने कहा अरे इस बुढ़िया को तो राज खजाने से मदद मिलनी चाहिए और इसको कहो कि कल ये राज दरबार में पहुंचे। तो इतनी बात करते करते उनका घोड़ा बुढ़िया तक पहुंच गया। तो मंत्री ने उस बुढ़िया को रोका और कहा ए बुढ़िया, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे इस राज्य का राजा युद्ध करने गया हुआ है और वहां वो बुरी तरह घायल है, मरने वाला है। तो बुढ़िया बिचारी तो एकदम उस गठड़ी को फेंक करके और छाती पीटने लगी कि हे भगवान, ये तू कैसा अन्याय कर रहा है, मेरी जान ले ले, मुझे बुला ले, हमारे राजा को सलामत रख। तो राजा सुन रहे थे, राजा को बड़ा अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा ना, तभी ताली बजाई। तो राजा समझ गया कि मैंने भी इसके लिए बहुत अच्छा सोचा था, मेरे मन में भी हाँ, मेरी बहन में भी आया कि ये बुढ़िया को मदद मिलनी चाहिए। तो मंत्री ने फिर राजा की ओर देखा कि राजन ठीक है। तब राजा ने उस दिन इन दोनों घटनाओं के बाद स्वीकार किया कि हाँ सचमुच हमारी वृत्ति में जो होता है, बिना सोचे समझे, वृत्ति ऐसी है कि सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती, समझने की भी जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप वाइब्रेशन दे देती है क्योंकि वो पहले से ही बनी हुई होती है। जो कुछ हमने किया होता है, जो हमने देखा होता है, बोला होता है, सुना होता है, जैसे कर्म किए होते हैं, वैसे कहते सोच समझ के करो, हाँ कहते हैं ना ऐसे। लेकिन उससे भी पहले वृत्ति एक आधार है सोचने और समझने का भी। क्यों कई कोई बात को बड़ा अच्छा जल्दी सोच लेते हैं, क्यों कोई बात को बड़ी अच्छी जल्दी समझ जाते हैं, अच्छी बात को, कई अच्छी बात को 10 बार समझाओ नहीं समझते, क्योंकि वृत्ति कैसी है, अंदर क्या है। तब राजा ने मान लिया कि उसका बिना कहे प्रभाव पड़ता है। इसलिए प्यारे बाबा ने हम बच्चों को ये कितनी अच्छी सेवा दी है, कितना अच्छा हमारा ये कर्तव्य है और कितना अच्छा हमारा अपना ये पुण्य का खाता बनता है, कितनी अच्छी हमारी आत्मा बनती है उससे, क्वालिटी वाली, जिसकी वृत्ति में भी शुद्धता है, कोई दूसरी गड़बड़ किचड़ा नहीं। और इसके लिए हमें कोई भी चीज का आकर्षण ना हो, जैसे अब समय को देखते हुए, क्योंकि हमारी रिटर्न जर्नी है, अब हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए, चाहिए कुछ? सब कुछ तो बाबा ने आपको दिया है, सब कुछ तो दिया है, कितना अच्छा मन आपको दिया है, कितनी अच्छी बुद्धि आपको दी है, कितनी अच्छी समझ मिली है, कितने अच्छे कर्म आप कर रहे हैं, वैसे आपके संस्कार बन रहे हैं, क्या चाहिए, यही तो सभी प्राप्तियों का आधार है। हमारी दादियों का कहीं कोई आकर्षण नहीं है, हाँ, जिसको हम वैराग भी कहते हैं, लेकिन ऐसा वैराग जो सुख देने वाला है, जिसमें कोई मेहनत कष्ट नहीं है। वैराग दुनिया में भी कईयों को आता है, हाँ, कोई इच्छा पूरी नहीं हुई तो भी वैराग आ जाता है, वो कोई वैराग नहीं कहलाता। कहते हैं आज से तो मुझे ये इस तरफ देखना भी नहीं है, मुझे चाहिए ही नहीं। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि मिला नहीं। हाँ, उसको बाबा वैराग नहीं कहता। परंतु कोई आकर्षण नहीं, किसी चीज का आकर्षण नहीं, किसी व्यक्ति का आकर्षण नहीं, कोई भी प्रकार की प्राप्ति का आकर्षण नहीं, कोई नाम मान शान का आकर्षण नहीं। आकर्षण शब्द भी वास्तव में फालतू है। किसी तरफ कोई कहीं कुछ नहीं, अंदर से भरपूर आत्माएं हैं। तो हम सबको प्यारे बाबा ने निमित्त बनाया है, आपको बाबा ने विश्व कल्याण की जिम्मेदारी दी है। आप सब चाहते हैं ना, ये हमारा तो स्लोगन ही है ना, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो आप सोचिए, आप विश्व परिवर्तन के लिए क्या क्या कर रहे हैं? भले आप तन मन धन की उंगली लगाते हैं, अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बनाते हैं, परंतु उसमें सबसे जरूरी हमारी वृत्ति इतनी पॉजिटिव बनती जाए, इतनी प्योर बनती जाए, इतनी पावरफुल बनती जाए। तो जैसे एक मन इस संसार से हमारा ऊपर है, कमल को इसलिए ऊपर दिखाते हैं, उसके ऊपर कोई कीचड़ा भी डाले, छींटा भी डाले तो फिसल जाता है, सिर्फ पानी का चमकता मोती के समान दिखाई देगा, बस। ऐसी हमारी अंदर की शुद्धता होती जाए। भले आप संसार में बैठे हैं, परिवार में बैठे हैं, कारोबार में बैठे हैं, लेकिन निर्लिप्त। ऐसे हमारी इंटरनल फीलिंग्स अंदर से, बस जैसे कुछ भी हो रहा है, हाँ, मैं न्यारी आत्मा हूं। तो वायुमंडल वैसा ही आपके इर्द गिर्द बनता जाएगा, स्वतः बनता जाएगा, आपको महसूस होगा धीरे धीरे, औरों को महसूस होगा। जिस प्रकार आप देखो हवा चलती है, अब जब सुबह चलती है, आपने अनुभव किया ना, तो थोड़ी हवा में ठंडक होती है, हाँ, कहते हो ना सुबह ठंडी ठंडी हवा थी। अब जब सूर्य निकल आया, हवा वही है लेकिन वो गर्म हो गई, इतनी बड़ी तेज गर्म हवा चल रही है ना। तो हमारी वृत्ति में, माना आपने कुछ नेगेटिविटी ग्रहण कर ली, कोई इच्छाएं रख ली, हाँ, कोई कहीं जैसे किसी चीज का मतलब ये होनी चाहिए, हाँ, आकर्षण शब्द तो अच्छा नहीं लगता इतना, परंतु ये हो जाए तो बहुत अच्छा है, तो वो हमारी वृत्ति को थोड़ा थोड़ा कमजोर कर देती है। ये बातें हम परवाह नहीं करते इन बातों की ना, सोचते क्या हुआ, ये तो हमारा सोचना, सोच ही तो लिया ना, कह ही तो लिया ना, मांग ही तो लिया ना, या मैं क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, फिर तो ठीक ही हो गया ना। भले वो भी अच्छा है, चलो ठीक तो किया अपने को, परंतु हम इन बातों से भी धीरे धीरे अपने को बचाते जाएं, बचाते जाएं, तो हमारी वृत्ति बहुत शक्तिशाली भी बनती जाएगी, शक्तिशाली भी। क्योंकि वृत्ति का शुद्ध होना, शक्तिशाली होना बहुत आवश्यक है। एक बार प्यारे बाप दादा ने इसके ऊपर बहुत अच्छी बातें सुनाई थी, कई बार बाप दादा की मुरली इस पर चली है, आप सब अगर ध्यान से डीपली स्टडी करते हैं तो। बाबा ने कहा था कि आप बच्चों को, क्योंकि अब सतयुगी संसार लाना है, जल्दी ही लाना है ना, हम चाहते हैं ना जल्दी आ जाए, हाँ, तो वायुमंडल परिवर्तन करना बहुत आवश्यक है, ताकि सभी आत्माओं का ध्यान भी खींचे। और वो वृत्ति से ही संभव है, जितनी आपकी वृत्ति शुद्ध और श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी। दूसरी बात, हम आत्माओं को परमात्मा के समीप लाना चाहते हैं, उसके लिए हम सेवा करते हैं, साइंस के साधन भी उपयोग करते हैं, अपनी वाणी समय श्वास भी लगाते हैं, परंतु उसकी सफलता हमारी वृत्ति की शुद्धता से है। वो सेवा हो रही है, होनी ही है, तो इसलिए भी आवश्यक है, हमारी वृत्ति से ही वो वाइब्रेशन आत्माओं तक पहुंचता है। तीसरी बात बाबा ने कही थी कि बच्चे, आपको अन्य आत्माओं के प्रभाव से भी बचना बहुत जरूरी है। आजकल ये वायुमंडल भी चारों तरफ बहुत खराब है, बहुत फैला हुआ है, आत्माएं अपने अपने प्रभाव डाल जाती हैं, चाहे लौकिक संबंधियों में भी देखो, दुनिया में भी देखो, हाँ, और हर आत्मा भिन्न भिन्न संस्कार वाली है, हर आत्मा भिन्न भिन्न तरीके क्या क्या यूज कर लेते हैं। हमें किसी भी आत्मा के प्रभाव में नहीं आना, परोक्ष तो सवाल ही नहीं, अपरोक्ष भी अगर कोई आपके ऊपर प्रभाव डालना चाहता है, तो मेरे ऊपर उस आत्मा का प्रभाव न पड़े तो अवश्य ही मुझे अपनी वृत्ति को हमेशा शक्तिशाली रखना है। ये बहुत आवश्यक है, तब सहज ही आप किसी भी प्रभाव से मुक्त रहेंगे। कैसी भी कोई ईवल आत्मा होगी, कैसी भी कोई नेगेटिव होगी, किसी भी लक्ष्य वाली होगी, कुछ भी चाहने वाली होगी, कुछ भी, तो चाहते हैं ना, सब चाहते हैं ना ये, हाँ, बहुत गहरे उसमें सोच में चले गए हो ऐसा लग रहा है, हाँ, है ना, समझते हो ना इस बात को, तो वृत्ति को बहुत शुद्ध और शक्तिशाली रखना है। बाबा ने यहां तक कहा था, अपनी सेफ्टी के लिए भी बहुत जरूरी है, अन्य आत्माओं के कल्याण के लिए तो चाहिए ही चाहिए, वायुमंडल बनाने के लिए तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए भी आवश्यक है कि पहले मेरी अपनी वृत्ति शुद्ध और शक्तिशाली हो। समझा, हमारे वरिष्ठ भाई बहनों की अवस्था क्यों अच्छी रहती है, चाहे बात कुछ भी सामने आती है, हमारी दादियों की स्थिति इतनी ऊंची क्यों दिखाई देती है, चाहे सुनाने वाले कुछ भी सुना जाते हैं, क्योंकि उनकी अपनी वृत्ति बहुत शक्तिशाली है, बहुत प्योर है। तो हमारी भी अपनी सिक्योरिटी भी इसी में ही है। और भिन्न भिन्न प्रकार की बातों से वायुमंडल की या प्रकृति की भी हम तभी सेफ रह सकते हैं, तब भी, क्योंकि ये हलचलें बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं, और हमें उतना ही, उससे कई गुना अपने आप को अंदर से स्ट्रांग करना है, और वो स्ट्रांगनेस है सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म, चाहे शरीर आपका कैसा भी हो, चाहे आसपास कुछ भी हो, चाहे हो या ना हो, परंतु मेरी अपनी अंदर की वृत्ति बहुत अच्छी सूक्ष्म स्ट्रांग रहे, जिसमें हमेशा कल्याण की भावना समाई हो, दूसरी भावनाएं आने ही नहीं दो, उसमें ही आपका कल्याण है। कई बार कई बहुत हद की उससे सोचते हैं, बहुत छोटे उससे सोचते हैं। अच्छा मैं दूसरे का ही भला सोचती रहूं, मेरा भला कब होगा, मेरा भला तो होता नहीं। अरे आपका भला ही उसमें है जब आप दूसरे का भला सोचते हैं, क्योंकि लौट के वो आपके पास आना है। ये ऐसी कला है, लौट के आप ही के पास आएगा, समझा? तो आप अपने पास लौट के क्या आने देना चाहते हैं? अच्छी चीजें। तभी हमने पहले ही कहा कि वृत्ति एक सूक्ष्म बीज है जो एक बहुत सुंदर फल बनने वाला है। तो अगर आप बढ़िया फल चाहते हैं तो अपने वृत्ति रूपी बीज को प्योर रखो, कोई प्रकार का किचड़ा उसमें नहीं आने दो, तो वो आपके लिए सुखदाई बन जाएगी। तो अपने लिए भी ये बहुत आवश्यक है, और इसके लिए आप कोई बहुत मेहनत नहीं है। हाँ, हमने सहज बात सुनाई ना कि शुभ शुभ संकल्प करो, आत्मिक भाव रखो। जितना आत्मिक भाव होगा ना, आपकी भावना शुद्ध रहेगी कि इसका कल्याण हो, रहम आएगा, क्षमा आएगी कि क्षमा कर दो, मेरा क्या जाता है, और क्या जाता भी नहीं सोचना वास्तव में, क्योंकि मैं हूं ही इसी कार्य के लिए, हूं ही इसी कार्य के लिए, मेरा ये जन्म ही इसलिए है। और तीसरी बात, आप देने वाली आत्माएं या लेने वाली आत्माएं, बताओ? सब देने वाले बैठे हैं। अच्छा, वेरी गुड, फिर तो बाबा बहुत खुश हो रहा होगा कि ये दाता के बच्चे मास्टर दाता हैं। तो जो देने वाला होता है ना, स्ट्रांग कौन होता है, देने वाला लेने वाला? सब नहीं बोल रहे, देने वाला ना, लेने वाला नहीं। तो लेने वाले को माल मिला, इच्छा पूरी हो गई, हाँ, बड़ों ने सोचा ये तो डिस्टर्ब होगा, चलो दो दो उसको, हाँ, मजा आ गया, क्या हुआ? देने वाला लेने वाला, सोच लो अच्छी तरह, विचार बदल रहा है? कौन सा विचार है? अभी भी देने वाला। अच्छा भाई, बड़े होशियार हो आप सब, हाँ? राइट राइट, हाँ? देने वाली आत्मा हमेशा स्ट्रांग होती है, भरपूर होती है, क्योंकि लौट के उसी के पास आता है, बढ़ता भी उसी का ही है। और आप क्या चीज देने वाले हो, अच्छी अच्छी या थोड़ी थोड़ी फालतू वाली भी, हाँ? थोड़ा गुस्सा दे दो, थोड़ी अच्छी तरह से किसी को ठिकाने लगा दो, हंगामा मचा दो, हाँ, अपनी बनवा लो, नहीं, ये भी तो देना ही है ना, हाँ? नहीं, अच्छी अच्छी चीजें देने का मजा ही तभी है, नहीं तो मजा ही नहीं है, हाँ? अब तो जमाना भी ऐसा आ गया है, कोई किसी से हल्की घटिया चीज लेना भी नहीं चाहता, हाँ? वो भिखारी भी आता है ना, हम एक बार जा रहे थे, एक बार क्या अक्सर ही होता है ऐसे, तो भिखारी लग भी नहीं रहा था, व्यक्ति ठीक लग रहा था, मांगने लगा, तो हमने उसको दो केले दे दिए, उसने पकड़े नहीं। मैं उसको बार बार कह रही हूँ, भैया ये अच्छे हैं, हम भी खा रहे हैं, हमारे पास भी उस समय रखे थे, एक दो भाई लेके बैठे थे खा रहे, ले लो। कहता नहीं, ये नहीं चाहिए। तो मैंने कहा फिर क्या चाहिए? कहता पैसा। वो तो भिखारी था ना, क्योंकि पैसे का ही था। लेकिन हमने उसको दिए नहीं, बिल्कुल नहीं दिए, क्योंकि वो तो हमारा कर्म का खाता बन जाएगा। हमें पतित आत्माओं को थोड़ा कुछ देना है। हाँ, कल्याण की भावना रखनी है। हमने उसी समय संकल्प किया उसके लिए, हे आत्मा तुम परमात्मा की संतान हो, तुम भटको मत, बस इतना संकल्प करके चल पड़े। और वो दो केले फिर किसी और को दिए, उसने तो स्वीकार ही नहीं किए। तो हमको अच्छा अच्छा सबके लिए, ये ताकत तो आपके पास बहुत है। तो ईश्वरीय सेवा में हमें हमारे पास जो कुछ है, जिसे आप अब तक अपना समझते आए, अब तो आप बाबा का समझते हो, तन मन धन समय, हाँ वो लगाओ। और अन्यों की सेवा में विश्व की आत्माओं के लिए जो आपको भगवान ने दिया है, इतना सुख, शुभ भावनाएं, प्रेम, शांति, उसके वाइब्रेशन फैलाओ। ये है वृत्ति की शुद्धता और शक्ति। तो आत्मिक भाव रखने से बहुत सहज लगेगा। और अनासक्त भाव रखो बस, कि मैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान मुझे बहुत दे रहा है और मेरा काम है सब आत्माओं का भला करना, सबको देना। ऐसा अनासक्त भाव आपकी अंतरात्मा को सदा शक्तिशाली, प्रसन्न, भरपूर, वृत्ति सदा शुद्ध सहज ही रहेगी, उल्टी बातें आएंगी ही नहीं। ओम शांति।
बन जाओगे जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे।